अभिमन्यु ने मासा की बात सुनकर कहा, आपने उनके पापा को मना नहीं किया, लेकिन आप उनके एग्जाम के लिए उनकी तरफ से बोल भी नहीं रही हैं। मासा, अगर आप बोल देंगी तो उनके माँ बाप उन्हें ज़रूर भेज देंगे, इसीलिए एक बार आप उनसे बात कर लें तो। इतना बोलते बोलते अभिमन्यु चुप हो गया, किंतु वहाँ पास में खड़ी उसकी माँ उसका मुँह देख रही थी। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि मासा ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, और आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी बात मानकर उनके माँ बाप से इप्सिता के एग्ज़ाम देने की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, इसीलिए हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है। और बेहतर होगा कि आप भी इस बारे में इतना ज़्यादा न सोचें, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दें और इन 10 दिनों में अपने प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ख़त्म करके वापस आएं, फिर शादी की तैयारी करवाएं, वही सबसे बेहतर होगा। मासा इतना बोलकर वहाँ से जाने लगी। तब अभिमन्यु ने कहा, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप मासा? उन्होंने मेरे इतना समझाने के बावजूद भी एक बार भी इप्सिता के माँ बाप से बात करने के लिए हामी नहीं भरी। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम मासा को समझ सकते हैं, लेकिन मासा तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब क्या करें हम? हमने तो इप्सिता से बोल दिया कि हम उन्हें उनके एग्ज़ाम दिलाने ले जाएंगे, और अब अगर हम अपनी कोई बात पूरी नहीं कर पाए तो वो क्या समझेगी हमें, कि हम सिर्फ यूं ही कुंवर सा कहे जाते हैं? हमारे हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है और हम सिर्फ अपनी मासा के कहने पर चलते हैं। नहीं, हम ऐसा करके नहीं होने देंगे। हम उनके एग्ज़ाम दिलाएंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अभिमन्यु ने अपनी माँ को वहाँ से जाते देख उन्हें आवाज़ लगाकर रोका और थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला, मासा, आप ऐसे बीच में बिना बात पूरी किए कैसे जा सकती हैं? मासा वहाँ से जा रही थी। उस जगह को छोड़कर जाने से पहले उन्होंने अभिमन्यु की आवाज़ सुनी और आखिरी बात सुनी तो वो हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी, क्योंकि अभिमन्यु के बोलने का तरीका अलग था और उसकी आवाज़ भी पहले से थोड़ी तेज़ हो गई थी। ज़्यादातर अभिमन्यु मासा से ऐसे तेज़ आवाज़ में बात नहीं करता था, लेकिन अभी जब अभिमन्यु ने मासा को रोकने के लिए इस लहजे में उनसे बात की तो मासा उनकी तरफ देखने लगी और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाईं। अभिमन्यु मासा के पास आकर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए बोला, मासा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हमारी और इप्सिता की शादी की वजह से उनका एग्ज़ाम अधूरा रह जाएगा तो हम शायद खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि आप ये सब कुछ हमारी शादी और राजगद्दी के लिए कर रही हैं और हम आपकी चिंता भी समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो ये कुछ ज़्यादा सेल्फिश नहीं हो जाएगा? और इस वक्त आपकी बातें सुनकर हमें ऐसा ही लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। मासा ने अभिमन्यु की बात पूज नहीं होने दी और बीच में ही रोकते हुए कहा, अपने बारे में नहीं, राजवंश, राजपरिवार के बारे में सोच रही हूँ। आपने ऐसे कैसे कह दिया अभिमन्यु कि हम ये सब कुछ अपने बारे में सोचकर कह रही हैं? मासा इतना बोलकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। अभिमन्यु ने उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अभी भी उनसे नाराज़ था और उसने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, जो भी हो मासा, लेकिन हम अपने आगे उनके बारे में तो नहीं सोच रहे ना, और हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। इसीलिए अगर राजकुमारी इप्सिता एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगी तो फिर हम उनसे शादी ही नहीं करेंगे और ना ही हम अपना राज्याभिषेक करवाएंगे। मासा ने जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनी वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए बोली, अभिमन्यु, आप होश में तो है ना? आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? अभिमन्यु ने धीरे से अपनी नज़र उठाकर मासा की तरफ देखते हुए कहा, मासा, हम जानते हैं हमने बहुत बड़ी बात बोली है, लेकिन हम अपनी बात को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं, और अगर हमने ये कह दिया है तो हम किसी भी हाल में ये शादी नहीं करेंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु गुस्से में वहां से सीधे अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अभिमन्यु को इस तरह जाते देख मासा ने उन्हें रोकते हुए कहा, अभिमन्यु, हमारी बात सुनिए। लेकिन अभिमन्यु गुस्से में था और उसने मासा की बात नहीं सुनी। मासा तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, अभिमन्यु, क्या आपने सुना नहीं? हम आपको बुला रही हैं, वापस आइए और हमसे बात करिए। अभिमन्यु सीधे अपने कमरे में चला गया। मासा अभिमन्यु को इस तरह नाराज होकर जाते देख रही थी और वो अभिमन्यु की बात सुनकर अपना सिर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गई। उनके कानों में अभिमन्यु की बात गूंज रही थी। जिस तरह से अभिमन्यु ने शादी करने से मना कर दिया, ये बात उनके दिमाग में बैठ गई। मासा काफी ज्यादा परेशान हो गई। उन्होंने अपना सर पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, अभिमन्यु ने अगर जिद कर ली तो फिर उसे कोई भी मना नहीं सकता। बचपन से ही अभिमन्यु पहले तो जल्दी किसी चीज़ की जिद नहीं करता, और अगर उसने जिद कर ली तो उसे पूरा करके ही मानता है। वहीं कुछ दूर पर खड़ी अभिमन्यु की चाची, जिन्होंने उन दोनों के बीच हो रही इस सारी बात को छिपकर सुना था, जैसे ही अभिमन्यु ने शादी ना करने और राज्याभिषेक ना करवाने की बात कही, उसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बड़ी ही अच्छी खुशखबरी मिली है। हम भाभी सा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अभिमन्यु को भी। अभिमन्यु ज़िद्दी है तो वहीं भाभी सा भी इतनी जल्दी किसी के आगे झुकती नहीं है, तो वो अभिमन्यु की बात कहाँ तक मानेंगी? एक तरह से देखा जाए तो हमारा तो फ़ायदा ही है ना। अभिमन्यु की शादी नहीं होगी और ना उसका राज्याभिषेक। ये खुशखबरी तो मुझे नरेंद्र को देनी चाहिए। अभिमन्यु की चाची जल्दी से अपने कमरे की तरफ गईं और उन्होंने देखा कि उनके पति अभी अभी ऑफिस से लौट कर आए थे और वो कपड़े बदलकर सोफे पर बैठे ही थे कि उनकी बीवी दौड़ते हुए कमरे के अंदर आई। उन्हें इस तरह से भागते हुए देखकर नरेंद्र ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है पल्लवी, इस तरह से भागती हुई क्यों आ रही हो? संभाल कर कहीं लड़खड़ा न जाना। अभिमन्यु की चाची ने खुश होते हुए कहा, अरे भला हम क्यों लड़खड़ा जाएंगी, अब तो हमारे अच्छे दिन लगता है शुरू होने वाले हैं, भगवान ने हमारी सुन ली। पल्लवी को इतना ज्यादा खुश होते देखकर नरेंद्र ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, क्या सुन ली भगवान ने, इतनी ज्यादा खुश क्यों लग रही हैं आप? अभिमन्यु की चाची ने अपने पति का हाथ पकड़ते हुए कहा, अभी हम नीचे गए थे तो हमने हॉल में अभिमन्यु और भाभी सा को बात करते हुए सुना। आपको पता है अभिमन्यु किसी बात को लेकर भाभी सा से पहली बार बहस कर रहे थे और भाभी सा ने उन्हें साफ साफ जब उनकी बात मानने से मना कर दिया तो आपको पता है हमारे प्यारे कुंवर सा ने क्या कहा? पल्लवी को इतना ज्यादा खुश होते देखकर नरेंद्र थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई दोनों माँ बेटे के बीच में जिसे सुनकर वो इतनी ज्यादा खुश हो गई है। उसने उसी तरह कन्फ्यूज होते हुए पूछा, तुम पहेलियां बुझाना बंद करो और बताओ क्या सुनकर आई हो तुम जिसे सुनकर इतनी ज्यादा खुश हो गई हो, और हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा कि अभिमन्यु ने भाभी सा की बात नहीं सुनी और उनसे बहस की। पल्लवी ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, तभी तो मैं भी इतनी ज्यादा खुश हो रही हूँ, अभिमन्यु ने साफ साफ शादी करने से इनकार कर दिया और साथ ही में उसने ये भी बोल दिया कि वो अपना राज्याभिषेक भी नहीं करवाएगा।
नरेंद्र ने जैसे ही ये बात सुनी उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उसने कहा, क्या बात कर रहे हैं आप, सच में? अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम यही तो चाहते हैं कि अभिमन्यु की शादी ना हो पाए ताकि हमें अपने मकसद में कामयाब होने में थोड़ा और समय मिल जाए, और अगर ऐसा हो गया, सच में इससे बड़ी खुशखबरी की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। पल्लवी, तुमने ध्यान से सुनाना, अभिमन्यु ने सच में शादी के लिए मना किया? पल्लवी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैंने पूरी बात सुनी है, अभिमन्यु ने शादी के लिए मना कर दिया है। क्रमशः